पिछले अध्याय में आपने देखा कि मानवी और वेद के बीच अंतरंगता बढ़ती है जबकि रुचिका और सुधीर के बीच एक बातचीत होती है। इस अध्याय में मानवी के सपने और वेद के साथ सामान्य व्यवहार का पता चलता है। इंदर एक पार्टी आयोजित करता है। रिया और शिव के बीच एक तनावपूर्ण मुठभेड़ होती है। आर्यन और सानवी के बीच एक संभावित संबंध का संकेत मिलता है। इंदर सानवी की मदद मांगता है और आर्यन इस पर आपत्ति जताता है। शिव सानवी के लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है क्योंकि उसे डर है कि इंदर और आर्यन की बात बढ़ जाएगी। सानवी रिया और कृति को ढूंढती है जो डांस फ्लोर के पास बैठी हैं। विक्रांत को पता चलता है कि बार इंदर ने खरीदा है। विक्रांत ने कहा कि आज काम पूरा हो सकता है। क्लब में रिया, कृति और आलिया डांस कर रही हैं जबकि सानवी साइड में खड़ी होकर नाश्ता कर रही है। आर्यन और शिव साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। आर्यन ने कहा कि कृति बचकानी है। इंदर सानवी को डांस करने के लिए कहता है। तभी इंदर और आलिया के पुराने रिश्ते के बारे में पता चलता है। सानवी स्थिति को अच्छी तरह से संभालती है। आर्यन और सानवी के बीच बातचीत होती है। नाउ नेक्स्ट, कहीं बाहर चले? बहुत भूख लगी है ना तुम्हें? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत ज्यादा, सानवी ने भी उसी मुस्कान में जवाब दिया। मुझे भी लग रही है, अगर तुम चाहो, आर्यन ने थोड़ा आगे झुककर कहा, हम दोनों कहीं बाहर खाना खाने चल सकते हैं, जहाँ तुम कहो। वैसे भी मुझे भी भूख लग रही है। असल में आर्यन बस कोई बहाना ढूंढ रहा था सानवी के साथ थोड़ा और वक्त बिताने का, सानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। पर सोच लीजिए, हम मेरी पसंद की जगह पर जाएंगे, इतनी हाईफाई नहीं होगी आपके लेवल की, आर्यन ने बिना पलक झपकाए कहा। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट मुस्कान थी जो सानवी को पल भर के लिए चुप करा गई। तो ठीक है, चलिए, उसने धीरे से कहा। मैं रिया और कृति को बता देती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा और टेबल से बाहर की तरफ चला गया। सानवी ने उसे जाते हुए देखा। वो यूं ही मुस्कुरा दी जैसे किसी ने उसके दिल के भीतर हल्की सी खिड़की खोल दी हो। सानवी जल्दी जल्दी रिया की गई। रिया उसकी तरफ मुड़ी। कहाँ जा रही हो तुम? सानवी ने सहजता से मुस्कुराने की कोशिश की। एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, सिर थोड़ा भारी है, आर्यन मुझे घर ड्रॉप कर देगा, उसने खाने वाली बात बीच में ही छुपा ली। न जाने क्यों, शायद खुद भी नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो आर्यन के साथ वक्त बिताने जा रही है। ठीक है, कृति को बता देना, सानवी ने कहा और रिया ने सिर हिलाकर हूँ कहा। फिर वो जल्दी से बाहर चली गई। इंदर की नज़र उसी दिशा में टिक गई थी। बाहर जाते हुए आर्यन और सानवी को साथ देखकर उसके भीतर कुछ हिल गया। एक अजीब सी खामोशी उसके अंदर उतर आई थी। वो कुछ नहीं बोला, बस चेयर की पुश्त पर झुककर बैठ गया। उसकी उंगलियां अनजाने में ग्लास के किनारे घूमने लगी। बाहर रात थी, लाइट्स की परछाइयां भीतर तक आ रही थीं और इंदर के चेहरे पर वही परछाइयां उतर आईं। वो आर्यन के साथ बाहर की तरफ बढ़ रही थी, कुछ कहते हुए मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान वही थी जिसे देखकर कभी इंदर का दिन बन जाया करता था। अब वही मुस्कान किसी और के लिए थी। उसके सीने में कुछ कस सा गया। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, बस एक हल्का दर्द, जैसे किसी ने अंदर से कुछ चुपचाप निकाल लिया हो। वो मन ही मन बोला, लेकिन क्यों लगता है जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ? उसकी आंखें कुछ पल उसी दिशा में टिकी रहीं, फिर उसने सिर झुकाया, ग्लास को होंठों तक ले गया पर पी नहीं सका। कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? आर्यन ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की थकान और शाम के बाद की राहत दोनों झलक रही थी। सानवी मुस्कुराई। जहाँ पास में एक छोटा सा ढाबा है, ओपन एरिया वाला, खाना वहाँ बहुत अच्छा है, थोड़ी दूरी पर है लेकिन रास्ता आसान है, शहर की हलचल से थोड़ा दूर हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्यन ने कहा। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और सानवी के बताए रास्ते पर चल दिए। रास्ते में हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। रात के अंधेरे में सड़क पर सिर्फ कुछ ही गाड़ियां थीं। क्लब से निकलने के बाद दोनों की थकान अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन माहौल ने उनके मूड को हल्का कर दिया था। ढाबा छोटी सी जगह था, साफ सुथरी, बाहर की ओर कुछ टेबल्स रखी हुई थी और अंदर भी खाने के लिए पर्याप्त जगह थी। तो आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? सानवी ने आर्यन से पूछा। बाहर हवा ठंडी और ताजी है, माहौल भी अच्छा है, चलो बाहर ही बैठते हैं, आर्यन ने जवाब दिया। बाहर टेबल पर बैठते ही हल्की ठंडी हवा उनके गालों को छूने लगी। रात का अंधेरा और ढाबे की हल्की रोशनी माहौल को रोमांटिक और आरामदेह बना रही थी। दोनों ने क्लब की भीड़ और संगीत की गूंज से राहत की सांस ली, लेकिन इस आराम और शांति से अनजान दो आदमी उनके कार के पीछे ही आए। जैसे ही आर्यन ने गाड़ी रोकी, वे भी वहीं रुक गए। एक के हाथ में कैमरा था। उनकी निगाहें सिर्फ सानवी और आर्यन पर टिक गई थी। रात की अंधेरी सड़कों और हल्की रोशनी में उनका पीछा करना और भी खतरनाक लग रहा था, लेकिन दोनों अभी इस खतरे से बेखबर थे। ढाबे का मालिक उनके पास आया, उनका ऑर्डर लिया और मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। अब वे दोनों वहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। सानवी का हाथ टेबल पर रखा था। आर्यन ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। तुम्हारी चोट कैसी है? उसने पूछा और ध्यान से उसके हाथ को देखने लगा। अब ठीक हो चुकी है, सानवी बोली। फिर हंसकर बोली, वैसे भी ऐसी छोटी छोटी चोटें तुम्हें खाती ही रहती थी बचपन से। आर्यन उसके हाथों को अपने दोनों हाथों से थामे बैठा था। सानवी को एहसास ही नहीं था कि उसका हाथ अब भी आर्यन के हाथों में है। वो मुस्कुराते हुए अपने बचपन की बातें बताने लगी। बचपन में मैं बहुत शरारती थी, सानवी बोली। आम के पेड़ पर चढ़ना तो जैसे मेरा रोज का काम था। कई बार नीचे गिर जाती थी। माँ डांटती थी, फिर भी अगले दिन वही काम करती थी। वो हंस पड़ी। कभी तो आम तोड़ने के चक्कर में हाथ छिल जाता था, कभी घुटने छिल जाते थे, लेकिन डर कभी नहीं लगा। मुझे लगता था गिरना भी खेल का हिस्सा है। आर्यन उसकी बातों को सुनते हुए हल्के से मुस्कुराया। उसकी नजरें सानवी के चेहरे पर टिकी रहीं। सानवी का चेहरा बोलते वक्त चमक रहा था, जैसे किसी ने उसके भीतर की पुरानी खुशियां फिर से जगा दी हों। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर अभी भी वही जिद्दी बच्ची है शायद, जो गिरती है लेकिन रुकती नहीं। सानवी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ शायद हूँ। फिर थोड़ी झिझक के साथ उसने पूछा, आपको भी चोटें लगी होंगी ना बचपन में। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की, हाँ बहुत बार, उसने कहा। मैं पेड़ से तो नहीं गिरा, लेकिन फुटबॉल खेलते हुए कई बार गिरा जरूर हूँ। देखो ये निशान, सानवी झुक कर देखने लगी। वहाँ पर एक पुराना गहरा निशान था, त्वचा में हल्का नीला पड़ा हुआ। वो धीरे से बोली, ये तो गहरा है, बहुत दर्द हुआ होगा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, हाँ तब मैं बहुत छोटा था, गिरा तो ज्यादा दर्द नहीं हुआ था, पर जब खून निकला तो माँ डर गई थी। मुझे याद है वो मेरे पास बैठकर रोने लगी थी, तब समझ नहीं आया था कि उन्हें क्यों रोना आया, लेकिन अब समझता हूँ। सानवी धीरे से उसके हाथ को फिर से छूती है, उंगलियों से निशान के पास। माँ का डर हमेशा हमारे दर्द से बड़ा होता है, उसने बहुत नरमी से कहा। कभी कभी लगता है वो हमसे ज्यादा हमारी चोट महसूस करती हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। शायद तुम्हें देखकर मुझे अपने बचपन का वो हिस्सा याद आ गया है जो कहीं खो गया था, उसने धीरे से कहा। सानवी हल्के से मुस्कुराई, उसकी नजरें झुक गईं। उन दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी अजनबी नहीं थी बल्कि बहुत सुकून देने वाली थी।
ढाबे की हल्की लाइट उनके चेहरों पर पड़ रही थी, हवा में ताज़ा पके खाने की खुशबू घुली थी, लेकिन दोनों कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वक्त थम गया हो।